ये आकाशवाणी दिल्ली है। हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनने पर किराए के मकान में रह रहे लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की। दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में उर्दू और फारसी शायरी पर व्याख्यान का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया और खो खो विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी। पुरुष टीम का मुकाबला अब से कुछ देर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी बनवारीलाल उपाध्याय, मोहम्मद इकराम और सीमापुरी विधानसभा से भाजपा की पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी भूमिका सिंह समेत कई नेता आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का स्वागत किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वहीं सुश्री स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद सरकारी कर्मचारियों में भारी हर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के अनेक सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें फोन कर सरकार का आभार प्रकट किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने पर किराए के मकान में रह रहे सभी लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार इसके लिए एक योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि सभी किराएदारों को बिजली पानी पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा और उनको समान अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी।
तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर ऐसी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तब भी एक किराएदार प्रकोष्ठ बनाया था जो बाद में भाजपा में शामिल हो गया था।
जिन किराएदारों की घोषणा ये आज कर रहे हैं 25 सितंबर 2019 उस दिन भी यही घोषणा की थी। आज हम 2025 में हैं। 10 सालों में एक भी किराएदार को कुछ नहीं दिया। काट की हांडी एक बार चलती है, दो बार चलती है, बार बार नहीं चलती। और दिल्ली की जनता को मूर्ख समझना बंद करें। दिल्ली की जनता जानती है कि आप धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं और आपकी घोषणाएं सिर्फ चुनावी पिटारा है।
उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने खिसकते जनाधार को देखते हुए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और अपने झूठ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 और 2019 में भी वोट हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने यही वादा किया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी पर बनी फिल्म की निजी स्क्रीनिंग में भारतीय जनता पार्टी ने बाधा डाली है। उनका दावा है कि यह फिल्म आम आदमी पार्टी के नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजने के पीछे के रहस्यों और भाजपा के असंवैधानिक और गैर कानूनी कामों को उजागर करने पर आधारित है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज राज ने कहा है कि इस फिल्म में राजनीतिक मंशा निहित नहीं है।
इस फिल्म के अंदर जितना मुझे मालूम है, ना तो कोई वोट अपील है, ना ही कोई राजनीतिक दल द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। और अब हमने निश्चय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस फिल्म को जनता तक पहुंचा के रहेंगे।
इस बीच भाजपा नेता प्रवेश सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 वर्षों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया है, जिससे शहर और नागरिकों को नुकसान हुआ है।
पिछले 11 साल में जो दिल्ली में सरकार चली है, उसने ना केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, बल्कि दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। सारे दिल्ली वासियों को अपने माया जाल में फंसाया, तरह तरह के प्रलोभन दिए, और ये सेम काम उन्होंने, आज दिल्ली भी बर्बाद हो गई है, पंजाब भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है।
इस बीच कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित दिल्ली सरकार ने बीते 10 वर्षों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा है कि शहर में लोगों को पानी, सड़क और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर आज राजधानी के नई दिल्ली क्षेत्र में कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया गया है।
भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। प्रवेश वर्मा जब वहां ग्राउंड पे प्रचार कर रहे होंगे तो देखकर बौखला गए, और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, प्रवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर भाजपा द्वारा हमला कराने के आम आदमी पार्टी के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने आप पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेता खुद पर हमले करवाएंगे और भाजपा को दोषी ठहराएंगे।
जैसे जैसे चुनाव आएगा, अरविंद केजरीवाल खुद घिनौनी हरकतें करेंगे कि हाय मुझ पर हमला हो गया। चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ भी लगवाएंगे, पत्थर भी फेंकवाएंगे और फिर कहेंगे कि हाय देखिए चुनाव में मेरे पर हमला हो गया। चुनावी जमीन खिसक चुकी है, चुनाव अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, कभी वोटों का ड्रामा करते हैं, कभी पूर्वांचल के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, और जब उनसे बात नहीं बनी तो खुद अपने गाड़ी पर पत्थर फेंकवा के बीजेपी पर दोष लगाते हैं।
उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी की राजनीति सबसे विभत्स दौर से गुजर रही है। श्री यादव ने कहा कि श्री केजरीवाल पर कथित हमला एक नियोजित षड्यंत्र है, ताकि बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता सकलन अख्तर की रिपोर्ट।
शहर की सुल्तानपुर माजरा उन चर्चित सीटों में से एक है, जिन पर इस विधानसभा चुनाव में सभी की नजर बनी हुई है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट पर यहां से दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर पार्टी के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरे श्री अहलावत को टक्कर देने के लिए भाजपा ने कर्म सिंह कर्मा और कांग्रेस ने जयकिशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2015 तक कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट आम आदमी पार्टी पिछले दो चुनावों से लगातार जीतती आ रही है। पिछले चुनाव में मुकेश अहलावत ने भाजपा के खिलाफ लगभग 67% वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी। लगभग 1,86,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर बड़ी संख्या में जेजे क्लस्टर और झुग्गियां हैं। टूटी हुई सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइट, बारिश के दौरान जलभराव की समस्या, पेयजल की दिक्कत और ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे यहां के स्थानीय लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की इस विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाती है, या फिर जनता इस बार कुछ उलटफेर करती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 285 मामले दर्ज किए हैं, वहीं 172 गैर लाइसेंसी हथियार, 29,300 लीटर से ज्यादा शराब, 15 करोड़ रुपए के लगभग 66 किलोग्राम मादक पदार्थ, 2 करोड़ 27 लाख से अधिक की नकदी जब्त की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज राजधानी के कनॉट प्लेस में आगाज़े वोटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सूफी गायक निजामी ब्रदर्स ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज चांदनी चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल में अपनी हेरिटेज वॉक श्रृंखला के हिस्से के रूप में उर्दू और फारसी शायरी एक परिचय विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उर्दू और फारसी शायरी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर विमर्श के लिए प्रतिष्ठित विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकारते हुए इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी है और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक कपिल के पास, जो इस समय नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं।
जी मुदिता।
जी अभिषेक, भारतीय महिला टीम का मुकाबला इस समय दक्षिण अफ्रीका से जारी है, इस समय आपके पास क्या ताजा अपडेट है?
इस वक्त दक्षिण भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ जारी है और जैसा मैं बता दूं, इस वक्त भारतीय महिला टीम डिफेंड की पोजीशन पे है और उसने 37 अंक हासिल कर लिए हैं, जबकि कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका जूझती नजर आ रही है भारतीय महिला टीम के पास और अब तक सिर्फ 14 अंक ही हासिल कर पाई है।
जी अभिषेक, और अब से कुछ देर में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला भी दक्षिण अफ्रीका से होगा, तो क्या लगता है दोनों में से किस टीम के जीत कर फाइनल में जगह बनाने की ज्यादा संभावना है?
भारतीय पुरुष टीम शुरू से ही स्ट्रॉन्ग दिखी है अन्य टीमों के मुकाबले, तो जहां तक विशेषज्ञों की और मेरी राय है, भारतीय पुरुष टीम साउथ अफ्रीका पर जीत हासिल कर फाइनल में पहुंच सकती है और फाइनल में अगर वह पहुंचते तो उसका मुकाबला नेपाल से होगा।
जी बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजधानी के सेंट जेवियर स्कूल के एक्सलेंट अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सभी विजेता छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक स्कूल छात्र के जीवन में वह सभी मूल्यों को उत्पन्न करता है जो उसे भविष्य में बेहतर नागरिक बनाने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी है, इसका असर यातायात और रेल परिचालन पर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनने पर किराए के मकान में रह रहे लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की। दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में उर्दू और फारसी शायरी पर व्याख्यान का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया और खो खो विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी। पुरुष टीम का मुकाबला अब से कुछ देर में दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।